नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार गति पकड़ रही है, क्योंकि चालू वित्त वर्ष में देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 7.4% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये 6.5% थी। जीडीपी के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वृद्धि एनडीए सरकार के निरंतर निवेश प्रोत्साहन और मांग आधारित नीतिगत उपायों के कारण संभव हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचागत विकास, विनिर्माण प्रोत्साहन, डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएं और व्यापार में सुगमता जैसे क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयास एक समृद्ध भारत के सपने को साकार करने की दिशा में अग्रसर हैं। आर्थिक विशेषज्ञ दीपशिखा सिकरवार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि जीडीपी में ये रुझान विभिन्न क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है।
जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं, ये एडवांस एस्टिमेट्स जो हैं 7.4%, ये दिखा रहा है कि जो मोमेंटम है अर्थव्यवस्था में भारत की, इतने सारे जो वैश्विक चुनौतियां रही हैं अर्थव्यवस्था के सामने और अभी भी हैं, उसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें गति बनी हुई है। सर्विस क्षेत्र जो है उसका परफॉर्मेंस, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन का परफॉर्मेंस जो है, दोनों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि फ्रांस भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में शामिल है। उन्होंने कहा कि बहुध्रुवीय विश्व के लिए प्रतिबद्ध दो देशों के तौर पर इस समय वैश्विक राजनीति को स्थिर करने के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। पेरिस में फ्रांस के विदेश मंत्री जियां नोएल बेरोट के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि लगातार बातचीत संबंधों को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में उथल पुथल मची हुई है और ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जो वैश्विक व्यवस्था को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। भारत वाइमर प्रारूप की बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष से हिंद प्रशांत क्षेत्र में उथल पुथल देखी जा रही है। उन्होंने वाइमर प्रारूप की बैठक के लिए भारत को मिले निमंत्रण की सराहना की। इसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के विदेश मंत्री शामिल हुए। विदेश मंत्री ने कहा कि चर्चा मुख्य रूप से भारत यूरोपीय संघ संबंधों, हिंद प्रशांत और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि यूरोपीय संघ और यूरोप के साथ भारत के संबंधों में आज सबसे अधिक विकास की गुंजाइश है। डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया बहुध्रुवीय दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना का पहला चरण इस वर्ष 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक चलेगा। इस चरण में घरों की गिनती की जाएगी। दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में शुरू होगा। इस चरण में व्यक्तियों की गिनती होगी, लेकिन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे दुर्गम क्षेत्रों में जनगणना इस वर्ष सितंबर में ही पूरी कर ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। श्री नड्डा प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक करेंगे और कई जिला स्तरीय पार्टी नेताओं से बातचीत करेंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले पट्टली मक्कल काची पीएमके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल हो गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके महासचिव इडप्पडी के पलनीसामी ने चेन्नई में पीएमके प्रमुख अंबुमणि रामदास के साथ मीडिया से बातचीत में ये घोषणा की। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के पौड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग 534 के दुगड्डा से गुमखाल के बीच सड़क के नवीनीकरण के लिए 390 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत करीब 18 किलोमीटर खंड को पक्की पटरी वाली 2 लेन सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच आवाजाही के रास्ते को बेहतर बनाना है। इससे लैंसडाउन छावनी इलाके तक भी बेहतर पहुंच मिलेगी। ये परियोजना चारधाम यात्रा और रक्षा गतिविधियों के लिए वैकल्पिक रास्ते के तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप क्वालिफायर के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। ये टूर्नामेंट 18 जनवरी से 1 फरवरी तक नेपाल के काठमांडू में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।